ओम ब्रह्म सत्यम। वाणी का पेज नंबर 1208 है, 1208। उसकी वाणी आप सब मिलकर उच्चारण करेंगे।
उज्जल नीति ये निर्मल करम, उज्जल नीति ये निर्मल करम,
उज्जल नीति निर्मल करम, उज्जल नीति निर्मल करम।
आत्म पूज जग जीवन धर्म, आत्म पूज जग जीवन धर्म,
आत्म पूज जग जीवन धर्म, आत्म पूज जग जीवन धर्म।
सत साधु मिल सूझ विवेक, सत साधु मिल सूझ विवेक,
सत साधु मिल सूझ विवेक, सत साधु मिल सूझ विवेक।
दुबुधा त्याग सिमर प्रभ एक, दुबुधा त्याग सिमर प्रभ एक,
दुबुधा त्याग सिमर प्रभ एक, दुबुधा त्याग सिमर प्रभ एक।
नाम जपत सब कलह विनाश, नाम जपत सब कलह विनाश,
नाम जपत सब कलह विनाश, नाम जपत सब कलह विनाश।
अखंड स्वरूप तत् पाए परगास, अखंड स्वरूप तत् पाए परगास,
अखंड स्वरूप तत् पाए परगास, अखंड स्वरूप तत् पाए परगास।
निर्भय धाम परम सत ठौर, निर्भय धाम परम सत ठौर,
निर्भय धाम परम सत ठौर, निर्भय धाम परम सत ठौर।
एक नाम नित जाप हजूर, एक नाम नित जाप हजूर,
एक नाम नित जाप हजूर, एक नाम नित जाप हजूर।
प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, प्रभु की आज्ञा मन माही विचार,
प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, प्रभु की आज्ञा मन माही विचार।
जो वरतावे सो सुख कर धार, जो वरतावे सो सुख कर धार
जो वरतावे सो सुख कर धार जो वरतावे सो सुख कर धार।
उज्जल नीति ये निर्मल कर्म आत्म पूज जग जीवन धर्म। मनुष्य जन्म की उज्जवल नीति क्या है? निर्मल कर्म करना, और सारे कर्मों का आधार जिसको हम निर्मल कर्म कहते हैं वो कहते हैं आत्म पूज जग जीवन धर्म। निर्मल का मतलब ही होता है मल रहित, अर्थात विकार रहित। तो मनुष्य जन्म लेकर जो कर्म करते हैं हम, उसकी नीति क्या है कि हर कर्म मेरा ऐसा हो कि धीरे धीरे पांच विकार का जो मल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो मेरे मन के अंदर संस्कार रूप में इकट्ठा हो गया है, वो लगातार कम होता रहे। ये विकार निरंतर कम होते रहें, ये उज्जवल नीति है मनुष्य जन्म में कर्म करने की। उसका आधार क्या करें कि आत्म पूज जग जीवन धर्म। मानव जीवन का धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है? आत्म पूज जग जीवन धर्म, कि आत्मा की पूजा अर्थात अंतर्यामी ईश्वर की पूजा, उसकी आराधना करने के लिए ये मानव जन्म मिला है, क्योंकि उसकी आराधना करने वाला ही इन पांच विकारों पर ध्यान देगा, उसके विज्ञान को सीखेगा और कैसे मैं जीवन जीऊं, मेरा दैनिक जीवन कैसा हो, ताकि ये पांच विकार की निरंतर कमी मेरे मन बुद्धि के अंदर होती रहे। तो अब बताइए कि जीवन का धर्म है आत्म पूजा, और मैं क्या कर रहा हूं? संसार पूजा, इंद्रिय भोगों की पूजा, उसके लिए कमाई, उसके लिए लक्ष्य, उसके लिए जीवन का समय खर्च करना, ये मेरे गृहस्थ जीवन की दौड़ है, ये मेरा गृहस्थ जीवन। तो प्रभु ने मानव जन्म दिया इन विकारों को खत्म करने के लिए, क्योंकि पांच विकार तो मेरे अंदर ही नहीं है, पूरी प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं सबके अंदर ये पांच विकार, कोई इससे आजाद नहीं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है, मनुष्य जन्म ऐसा है कि यहां आकर एक मौका प्रभु मुझको देते हैं कि तू ये पांच विकारों की कमी कर सकता है, और यही तेरे जीवन की सफलता है, यही तेरा वास्तविक जीवन का धर्म है जो तूने धारण करना। इसीलिए प्रभु मानव जन्म हमको जब देते हैं तो खुद गुरु बनकर भी आते हैं, अवतार बनकर भी आते हैं, शास्त्रों की रचना भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? और तो कोई संसार का जीव जंतु पढ़ना जानता नहीं, केवल मनुष्य ही जानता है। तो मैं भी यदि सबकी नकल करके जीवन बना लूं अपना, जिसको मैं कहता हूं सुखी जीवन, तो जिसको मैं सुखी जीवन कह रहा हूं वास्तव में वो विकारी जीवन। यदि मैंने इस विज्ञान को नहीं सीखा तो फिर सब कुछ करके भी मेरा पतन लाजमी है, होगा ही होगा, क्योंकि पांच विकार से जो बचने का रास्ता है, इससे ऊपर उठने का रास्ता है, वो सिमरन है, प्रभु की याद है, प्रभु का अनुभव है। यदि मेरे जीवन में ये कोई क्लॉज, ये कोई घर है ही नहीं इसका कोई भी, इस विचार का, तो फिर तो भटक जाऊंगा। कहते हैं कि सत साधु मिल सूझ विवेक, दुविधा त्याग सिमर प्रभ एक। अब वो कह रहे हैं कि सत साधु से मिलकर तू विवेक धारण कर। अब सत साधु कहां मिलेगा आपको? आजकल के जमाने में सत साधु का मिलना, जैसे महाराज जी हैं वो सत साधु हैं, कबीर हैं सत साधु हैं, नानक हैं सत साधु हैं, कहां मिलेगा? तो सीखना क्या है कि विवेक की सूझ मिल जाए। इसीलिए अपने जीवन में मैंने गुरु रूप में एक सत्साधु को धारण करना होता है।
उस पर विश्वास करना होता है। जब विश्वास करता हूं तब उसकी बात समझने की, पढ़ने की, सुनने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझको ये सूझ मिलती है कि सही क्या है, गलत क्या है, जो विकार मेरे अंदर है उनसे कैसे मुक्त हो सकता हूं, ईश्वर का स्मरण मैं क्यों करूं। मायाधारी जो हमारा जीवन है, जो भोगों के लिए ही जीते हैं, वही अपने संतान के लिए लक्ष्य बनाते हैं, उनको भी वही ट्रेनिंग देते हैं, वहां विवेक का तो कोई काम ही नहीं। विवेक का संबंध सीधा सीधा जीव और ईश्वर के बीच का है। जीव यानी मैं यदि संसार की मुसीबत से, संसार के बंधनों से, संसार की बेचैनी से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूं तो एकमात्र रास्ता प्रभु का मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग संसार में नहीं। इसीलिए संसार में संसारी तरीके से जीते हुए भी मैं अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव कर सकता हूं। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि तुम जहां हो, जिस हालत में हो, ईश्वर भक्ति कर सकते हो, लेकिन मैं बहाने तलाश करता हूं, क्या करूं, गृहस्थ में इतने काम हैं, मैं गृहस्थ में रहता हूं, बिजनेस में इतने काम हैं, नौकरी में इतने काम हैं, बड़ा अपराधी हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। हम सारी मजबूरियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं है। इसी ये तो जो खुद ईश्वर है, वो गुरु ये निर्णय क्यों कह रहा है, तुम जहां हो, जिस हालत में हो, ईश्वर भक्ति कर सकते हो। और ये बात उन्होंने उस एक से कही थी जो उनके पास आया था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बोले क्यों लेना चाहते हो? वो मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं। बोले इसके लिए संन्यास लेने की क्या जरूरत है, ये काम तो तुम घर पर रहकर भी कर सकते हो। तो वो कहता है कि महर्षि से, महर्षि आपने संन्यास क्यों लिया? तो कहते मैंने संन्यास लिया नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है। और तुम्हारा प्रारब्ध यह है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम घर में ही रहोगे। इसलिए उसको सूत्र बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं, तुम जहां हो, जिस हालत में हो, ईश्वर भक्ति कर सकते हो। तो ये कला मैंने गुरु से सीखनी होती। तो जब तक मैं गहरा मनन नहीं करूंगा शास्त्रों पर, उनके मार्गदर्शन पर गहरा मनन नहीं करूंगा, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आई, फिर मैं बहाने ही बनाता रहूंगा। एक आम पब्लिक होती है, उनको तो, उनके सामने तो ये बातें होती ही नहीं। देखिए हम लोग जो हैं, जो सत्संग श्रवण करते हैं या कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ सिमरन करते हैं, ये बात तो उन लोगों के लिए कि तुम जहां हो, जिस हालत में हो, ईश्वर भक्ति कर सकते हो। तो वो कला सत्पुरुष हमको सिखाते हैं। तो कहते हैं कि सत साधु मिल सूझ विवेक, दुविधा त्याग सिमर प्रभ एक। तो सबसे पहले मैंने ये सीखना होता है कि मेरी दुविधा क्या है। मैं बड़ी दुविधा में फंसा हुआ, कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा। तो दुविधा क्या है कि संसार में आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट करते हो तो उसका अपोजिट साथ में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आपने कोई सुख की प्लानिंग करी, सुख के लिए पुरुषार्थ किया, सुख के लिए तैयारी करी, तो दुख आप ऑटोमेटिकली खरीद लेते हैं। जितना बड़ा सुख की कल्पना कर लोगे उतने बड़ा दुख आप अपने लिए तैयार कर लो। उस सुख प्राप्ति के लिए वो पता नहीं भविष्य में मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन दुख आपका उसी दिन से भोगना शुरू हो जाता है जिस दिन तुम सुख प्राप्ति का लक्ष्य बना लेते हो। तो प्रकृति का रहस्य ये है। इसलिए महर्षि कहते हैं प्रेमी सुख से ही दुख का जन्म होता है। सुख दुख एक साथ रहते हैं, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आधारित है, ये इसमें से स्वतंत्र एक कोई भी नहीं। तो अब बताइए यदि मेरे अंदर विवेक है तो मैं क्या करूंगा? भाई जीवन चलता रहे, जो जरूरी काम है वो होते रहे, बाकी क्यों सुख इकट्ठे करना, क्यों माया इकट्ठी करनी। तो विवेक से काम लेता है महाजी जी, कह रहे हैं कि सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न। गुरु तो दूसरी बात कह रहा है कि जिसका जीवन सादा है अर्थात कम में गुजारा करना जिसने सीखा है, जिसका मन प्रसन्न, उसका मन प्रसन्न रहता है। जिसने बड़े बड़े सुख भोगने के लक्ष्य बनाए ही नहीं, उसका मन प्रसन्न है, संतुष्ट है अंदर से। मैं बड़े से बड़े लक्ष्य तैयार करता हूँ कंपटीशन करके। दूसरों को देखा देखी कि इसके पास इतना साजो सामान है, इतना पैसा है, ये तो बड़ा सुखी इंसान है, मेरी कल्पना है, तो मैं भी वैसे ही निकल करके लक्ष्य तैयार कर लेता हूँ। तो इसलिए ये दुविधा है मेरे मन में। इस दुविधा का निर्णय कहाँ से होगा? ये इस दुविधा का निर्णय विवेक से होता है। तो पूरी सृष्टि में हर चीज द्वंद्व रूप में, इसे कहते हैं जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी जरूर, जो पैदा हुई है वो मरेगी जरूर। तो ये परिवर्तनशील संसार है। और प्रकृति का सिद्धांत भी ये है कि गीता में कह रहे हैं कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, और तीनों गुण जो हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये पैदा कहां से हुए? ये प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इसको प्रभु की माया कहा जाता है। तो प्रभु की माया में जो फंस गया वो तो इन गुणों के अंदर ही चक्कर काटता रहेगा और दुविधा में फंसा रहेगा। इसीलिए प्रभु कहां है? इन तीन गुणों से ऊपर है, पर वो अंतर्यामी है। तीन गुण बुद्धि में है, तीन गुण जीव के अंदर है, लेकिन जो प्रभु जो मेरे साथी हैं, जिनके कारण मेरा जीवन है, जिनके कारण मैं जानता हूं, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो प्रभु निर्गुण है। तो इसीलिए वो निर्गुण गुरु के रूप में संसार में प्रकट होते हैं, ये विवेक सिखाने के लिए कि तेरे मानव जीवन की सफलता मेरी तरफ आने में है, ना कि संसार की तरफ प्रगति करने में। इसीलिए सारा विवेक आपको एक ही कह रहा है गुरु का, क्या? कि तू सादा जीवन धारण कर, अर्थात तेरे जीने की कला या जीने की होशियारी इसमें है, तू कम से कम में कितना गुजारा कर सकता है, तेरी बुद्धिमत्ता इसमें है, तू कितने कम में गुजारा कर सकता है, ये तेरी आर्ट है, जीने की कला है। और तू क्या करता है? संसार की निकल करके कितना मैक्सिमम में इकट्ठा कर सकता हूं उसकी कोशिश करता हूं, और पूरा जन्म तेरा ऐसे ही नष्ट हो जाता है बेचैनी लेकर ही, कुछ नहीं मिलता तुझे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दुविधा त्याग सिमर प्रभ एक। तो विवेक का उपयोग कहां पर है? ताकि ये दुविधा जो है मेरे मन की हट जाए। हटेगी कैसे? बुद्धि का निर्णय जब आपका हो जाएगा, जैसा कि वाणी कर रही है कि संसार दुख रूप है। क्यों दुख रूप है? क्योंकि हर चीज यहां द्वंद्व के साथ है, और तो उसमें से हर चीज हर मामले में एक सिलेक्ट करता है, मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो बड़े सुख की कल्पना करता है तो बड़ा दुख भोगने के लिए उसी दिन से तैयार हो जाए। तेरे बारे में सत्य ये। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं उस वाणी पर, सत्पुरुष के वचनों पर मनन करते हैं, तब हमारे भी वही निर्णय बुद्धि के हो जाते हैं जो सत्पुरुष निर्णय कर रहे हैं। तो उसके लिए दुविधा त्याग के लिए क्यों करें कि सिमर प्रभु। तो दुविधा का त्याग इसलिए कर ताकि एक प्रभु का सिमरन तो कर सके। और वो प्रभु का सिमरन करना कहां है? इस देह के अंदर करना है। देह के अंदर तेरा मन है, और मन में क्या सिमरन कर रहा है? स्मरण कर रहा है दुविधा संसार की, सुख दुख, मिलना बिछड़ना, अच्छा बुरा, हर चीज का द्वंद्व। तो दुविधा का तो स्मरण कर रहा है, तो दुविधा में सारी जिंदगी फंसा रहेगा, नहीं फंसा रहेगा। इसीलिए संसारी जीवन को मैंने सिंप्लीफाई करना था, सरल करना था, सादा करना था, और सिमरन के लिए वक्त निकालना था, प्रभु की याद के लिए समय निकालना था। और मैं क्या बहाने करता हूं, क्या करूं, इतना बिजी हूं, इतने काम है, सिमरन के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो रात दिन जब तू संसार की चिंता कर रहा है, संसार का चिंतन कर रहा है, तो मन तो वही है ना, तो मन ईश्वर में, मन ईश्वर का चिंतन क्यों करेगा? तो इसीलिए जब तक मेरी समझ नहीं बदलती, इस वाणी पर, सत्पुरुषों के वचनों पर मैं मनन नहीं करता, गहराई से उसको समझने की, सोचने की उस पर कोशिश नहीं करता, मेरी बुद्धि का निर्णय बदलेगा नहीं। तो आगे कह रहे हैं, नाम जपत सब कलह विनाश, अखंड स्वरूप तत्व पाए परदास। अब बताइए, नाम जपत सब कलह विनाश, तो कलह कलह तेरे मन में ही तो है, ये वो कला है जीने की, सारे कलह का विनाश हो जाता है। इतना विनाश हो जाता है कि समाधि लग जाती है, समाधि में तो शरीर का होश ही नहीं, वहां मन की सत्ता की भी एंट्री नहीं, मन मेरा है, लेकिन वहां मन प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मन कहते ही उसको है जिसके अंदर संकल्प उठता है, और समाधि में संकल्प नहीं उठता। तो तेरे स्मरण की वो अवस्था आ जाती है कि मन तेरा है लेकिन तुझको लेश मात्र भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अब जीव और प्रभु अंदर एक है, वो समाधि की हालत। तो वहां परम शांति है, परम आनंद है, जिसकी तू तलाश में था युगों युगों से, वो तेरे इस देह में ही, वर्तमान देह में तुझको मिल सकती है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए आया था। तू कहता है क्या करूं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, क्या करूं, अब तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता, कितने बहाने तलाश करता है। लेकिन विचार करके देख, तेरा मन कभी एक मिनट भी रुकता है संसार के बारे में सोचने से? इतने बहाने तू बना रहा है, लेकिन विचार करके देख, तेरा एक मिनट भी मन रुकता है कभी संसार की बात सोचने से? ये लगातार संसार की सोचता रहता है। तो कह रहे हैं तूने इसकी जगह तो करतार की सोचनी थी, मन तेरा है, तू प्रभु की याद कर सकता था। उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे सतरूप मुरारी, वाणी तो ये कहती। और रामकृष्ण परमहंस जो है एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक नौकरानी किसी मालिक के घर में उसके बेटे का पालन पोषण कर रही है, उसको खाना खिलाती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन जो अपना बालक वो घर छोड़ा ये है, वो उसको वो एक मिनट भी नहीं भूलती, वो हर समय ध्यान रहता है ये मेरा बालक नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं कर रही हूं, मेरा बालक तो घर पर है। तो जिस प्रकार जिसके साथ अपनापन है, जो मेरा है, उसकी याद नहीं छूटती आपकी, कर्तव्य करते हुए भी, ड्यूटी करते हुए भी, मन के एक कोने में अपना जो जिसके साथ संबंध है वो जुड़ा रहता है उसे। इसी प्रकार जिसके अंदर विवेक आ गया, उसका जो मन है वो ईश्वर से दूर हो ही नहीं सकता। मन के एक कोने में ईश्वर पड़ा ही रहेगा, चाहे संसार के कितने भी कर्तव्य उसको मिले हों, वो पालन करते करते भी प्रभु की याद से दूर नहीं हो सकता। ये बात सब कुछ बार बार कहें। और देखिए महर्षि रमण जो शांतम्मा थी, जो खाना बनाती थी किचन के अंदर, जहां सैकड़ों लोग रोज खाते थे, वो महर्षि से कह रही है एक दिन कि महर्षि, लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, कोई आंख बंद करके आपके सामने बैठता है प्रभु का ध्यान करने के लिए, और मैं दिन भर खाना ही बनाती रहती हूं, मेरा मन करता है मैं भी आपके पास आकर बैठूं। तो महर्षि रमण क्या कह रहे हैं, जो खुद ईश्वर है वो क्या कह रहे हैं उससे, कि तेरा मन मुझ में पड़ा रहता है, तुझको गुरु की याद आती रहती है, तेरे लिए इतना ही काफी है, कोई उसको अलग स्मरण का प्रोग्राम नहीं दे रहे। क्योंकि मन का ध्यान, या यूं कह के मेरे प्राण ईश्वर में पड़े रहे, यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं किसका कैसा कैसा प्रारब्ध है, हो सकता है किसी के शरीर को इतने कर्म करने पड़े प्रारब्ध वश कि उसको दो मिनट की फुर्सत ही नहीं, ठीक से सो भी नहीं पाता। लेकिन सतपुरुष कह रहे हैं तेरी ये हालत हो तब भी तू ईश्वर की भक्ति कर सकता है, वो तो ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब जब तक मेरे अंदर ईश्वर के प्रति भाव ये नहीं आता कि प्रभु मेरे हैं, वो अंतर्यामी है, वो मेरा जीवन है, वो मेरे प्राण है, तब तक उसकी याद कैसे आएगी। आपके प्राण तो संतान में पड़े हुए हैं, आपके प्राण तो दुकान में पड़े हुए हैं, आपके प्राण तो नौकरी में पड़े हुए हैं, आपके प्राण तो भोगों में पड़े हुए हैं, पैसे में पड़े हुए हैं, सब कुछ आपने उसके लिए समर्पित कर रखा है, अपने जीवन को भूले हुए। इसका मतलब पांच विकार को मैं रात दिन पाल रहा हूं, उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि संसारी जीवन का मतलब ही एक होता है कि पांच विकार का जीवन। और जो बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंस समझ के संसारिक जीवन संसारिक तरीके से व्यतीत कर रहा है, वो पांच विकार की कमाई करके संसार से विदा होगा। तो यही तो आत्महत्या है, और क्या आत्महत्या होती है। तो मैं सुसाइड कर रहा हूं, जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, मुझको ये भय नहीं है कि ईश्वर ये मानव जीवन मुझसे छीन लेंगे, जब इसका मैंने सही उपयोग ही नहीं किया तो वो तो मुझसे ये जीवन छीन लेंगे। तो शांति की कमाई के लिए आया था, और मैंने सब कुछ की बातें समझने की बजाय बहाने बनाने शुरू कर दिए, मैं बड़ा बिजी इंसान हूं, मैं मजबूर हूं, ना मैं सत्संग में आ सकता, ना मैं सिमरन कर सकता, ना मैं स्वाध्याय कर सकता। ध्यान रखिए, ईश्वर जानता है कि तू बहानेबाजी कर रहा है, उसकी बात समझने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने सत्पुरुषों की बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नाम जपत सब कलह विनाश, अखंड स्वरूप तत्व पाए परगास। तो ये सारे कलह का विनाश नाम जपने से होता है, प्रभु की याद करने से होता है। उसकी याद करने के लिए ही ये बाकी चीजें चाहिए सारी सारी। ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं ये किस लिए? ताकि मैं सिमरन में अपना वक्त लगा सकूं, दिल मेरा संसार में ना पड़ा रहे, वो प्रभु में पड़ा रहे। निर्भय धाम परम सत ठौर, एक नाम नित जाप हजूर। और अंतिम बात वो कह रहे हैं, प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, जो वर्तावे सो सुख कर धार। सिमरन का राज यहां छिपो, प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, जो वर्तावे सो सुख कर धार। याद रखिए, जिस दिन आपकी देह का जन्म होता है और जिस दिन ये देह आपकी मरती है, सब कुछ प्रभु हुक्म में ही होता है। इतनी बड़ी सृष्टि कोई इंसान इसमें दखल दे सकता है? लगता तो ऐसा है कि बहुत कुछ हम दखल दे सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि आप प्रभु की इस रचना में दखल दे ही नहीं सकते। प्रभु ने यह पावर आपको नहीं दी है, अपने पास रखी है। इसलिए आपकी वर्तमान देह जिस दिन पैदा होती है, जिस दिन ये मरती है, पूरा फिक्स प्रोग्राम है इसका। जिस बात के लिए कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, ये प्री फिक्स्ड है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कुछ स्वतंत्र है ही नहीं करने के। अब बताइए इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब सारा खेल मन बुद्धि का है, इसीलिए देह प्रारब्ध के अधीन है और वाणी इसका निर्णय दे रही है। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। इसलिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी मन बुद्धि तेरे पास है ना, इसमें तू परिवर्तन कर सकता है, संसार में नहीं। संसार में परिवर्तन करेगा भी तो वो प्रभु के हुक्म के अंतर्गत ही होगा, लेकिन तेरे अंदर का जो परिवर्तन है उसके लिए तुझको विवेक चाहिए, उसके लिए गुरु की शिक्षा चाहिए, गुरु पर विश्वास चाहिए, ईश्वर पर विश्वास चाहिए। ये मन बुद्धि के परिवर्तन के लिए ये ज्ञान है, मन बुद्धि का निश्चय पलटने के लिए ये सारा जो है सत्पुरुषों के निर्णय है और ये सिमरन है। और शांति कहां है? शांति संसार में है क्या? शांति का संबंध भी तो मन बुद्धि से, वैराग्य का संबंध भी तो मन बुद्धि से। सारे गुण जितने भी शास्त्रों में लिखे हैं, सबका संबंध केवल मन और बुद्धि से, और ये स्वतंत्र है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। देह का कर्म प्रारब्ध के अधीन है। मान लिया तुझसे कोई गलती हो गई और तुझको पता लगा मुझसे गलती हो गई, तेरी बुद्धि कह रही है, तो प्रभु से आगे प्रार्थना करता है, प्रभु ये कैसा प्रारब्ध था, ये इतनी बड़ी गलती ये देह करने को मजबूर हो गई? तो प्रभु जानते हैं ये तेरा प्रारब्ध है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि तेरा दिल कहां लगा हुआ है, तूने जानकर की है या तुझको मजबूर किया गया है? तो प्रारब्ध करके तो मजबूर किया गया है, लेकिन यदि तू उससे कन्विंस्ड है मैंने ठीक किया, ये माफी नहीं है तुझको। इसीलिए ज्ञान के आधार पर मैं जी सकता हूं, इसीलिए वाणी एक कह रही है बड़ा स्पष्ट निर्णय कि प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, जो वर्तावे सो सुख कर धार। तेरी बाहर की परिस्थितियां कैसी भी अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी क्यों ना हो, लेकिन यदि तुझको तेरे अंदर ये होश है, ये प्रभु ने दिया है और तूने प्रभु हुक्म में उसको सहन करना है और तू कर रहा है, तो इसीलिए तेरी बुद्धि का निर्णय यदि ये है कि प्रभु ने जो दिया है वो मेरे लिए ठीक ही है, क्योंकि प्रभु तो बेईमानी करते नहीं, वो तो किसी को धोखा देते नहीं, वो तो केवल न्याय करते हैं। इसलिए पूर्व मैंने जो दुष्कर्म किए होंगे, गलतियां की होंगी, उसके लिए मुझे बुरा प्रारब्ध मेरे जन्म में मिला है, लेकिन भक्ति मैं कर सकता हूं, फिर भी कर सकता हूं। कब? जबकि जो भी परिस्थितियां तेरे आगे आए उसके हुक्म में देख और अंतरामी प्रभु की याद निरंतर करता रहे, उसके लिए जीता है। इसका मतलब हो गया उसका रास्ता सिमरन से ही होकर जाता है, क्योंकि अंतर्यामी ईश्वर अंदर है, मन बुद्धि अंदर है, मैं अंदर हूं, तो मेरे और ईश्वर के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, दोनों एक साथ ही हैं। लेकिन मैं, मेरी बुद्धि का निर्णय संसारिक होता है, इसलिए शरीर को अपना स्वरूप समझ लेता हूं और शरीर करके संसार को अपना समझ लेता हूं, उसको सुख का स्रोत समझ लेता हूं और शांति मेरी छिन जाती है। और प्रभु शांति रूप है, आनंद रूप है, जीवन रूप है, चेतन रूप है, ऐसे प्रभु मेरा अंतर्यामी है, उनको तो याद नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ईश्वर है इस देह के अंदर, सबसे बड़ा सुख का स्रोत तो ईश्वर है, उसको मैं भुला बैठा हूं क्योंकि मेरी बुद्धि में विवेक नहीं। इसीलिए अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको संभाले। महाजी ने 5 नियम दिए कि इस प्रकार से जब दैनिक दिनचर्या बनाओगे और कारणकर्ता प्रभु को समझोगे, संसार में जो दुख आते भी हैं, बेचैनी आती भी है, बुरी परिस्थितियां आती भी हैं, तेरे अंदर प्रभु की याद होनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु दिया तो तुमने ही, बिना प्रार्थना तो तुम ये परिस्थितियां दे ही नहीं सकते तुम, इसलिए आप शक्ति दो कि मैं आपको ना भूल पाऊं, आपके लिए जीऊं, आप अंतर्यामी हो, मेरे संगी हो। इसलिए अब से लेके मौत तक प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी याद निरंतर करता रहूं, चाहे संसार के काम में मुझे कितना भी प्रारब्धवश बिजी रहना क्यों ना पड़े। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़े बड़े कठिनाई रहकर भी लोगों ने जो है, भक्तों ने जो है, ईश्वर की भक्ति की है और ईश्वर की प्राप्ति भी की है, मैं भी कर सकता हूं। इसलिए उम्मीद ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, प्रभु की बात मानकर अपनी बुद्धि में विवेक धारण करें और प्रभु की याद करें। ओम धर्म।